गया, स्वस्थ गया तो थोड़ा गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। लेकिन अभी ओवर द पीरियड क्या हो गया है, अभी ऐसे कहते हैं चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, और फिर हेल्थ गया तो थोड़ा गया, और पैसा गया मना सब कुछ गया। और इसीलिए हम देखते हैं कि इतने सारे कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस है ना, इतने लॉ कॉलेजेस, मतलब आप कितना भी आप देखो और इतना हम लोगों ने एडवांसमेंट किया है, लेकिन क्या आज एक डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, इंजीनियर क्या एक अच्छा इंजीनियर है? तो हमारा लक्ष्य ये रहेगा भले वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जो उसको चाहिए वो बने, लेकिन उसके साथ एक अच्छा ह्यूमन बींग बने ना। तो पहले हमारे अंदर ये होना चाहिए ना, ये नहीं सोचे कि हाँ उसको डॉक्टर बनाना है, उसको इंजीनियर बनाना है, वो तो वैसे भी बन जाएगा, लेकिन सबसे अहम इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, वो अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने। तो ये जो अच्छा है वो अच्छा कैसे लेके आना है, यही आज हमारा प्रयास रहेगा। और इसलिए आज हमारे बीच है प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन सर, जो है इंटरनेशनल मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल स्पीकर है, ये कॉर्पोरेट ट्रेनर भी है, तो काफी सारे कॉर्पोरेट कंपनीज है, L&T है, रिलायंस है, यहाँ पे इनके सेशंस होते रहते हैं, आर्मी है, एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस रहता है काफी ये लोगों को, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, और साथ साथ जो वैल्यू एम्पावरमेंट है, सोसाइटी को जो बहुत अच्छा बनाना है, ये कैसा हम बना सकते हैं, या इसके लिए सर बहुत कार्यरत रहते हैं, तो हम जोरदार तालियों से, मैं उनका बहुत लंबा CV है, पूरा डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप उनके लेक्चर से ही समझ पाएंगे, तो हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं प्रोफेसर ईवी स्वामीनाथन।
शांति, गुड इवनिंग एंड नमस्कार आप सभी का द डिवाइन गर्व संस्कार इस लेक्चर में, इस सेशन में मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। आई एक्सटेंड अ वेरी वेरी हार्टी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज का जो सेशन स्टार्ट करने के पहले लेट अस मेक क्लियर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इसमें मुख्य तौर पर दो तीन ऑब्जेक्टिव हैं। The first objective is to help the mother, okay, to undergo this wonderful process, right? That is very very important. Okay, ऐसे समय पर माँ को काफी प्रकार की stress होते हैं because there's so much of hormones that has been released. This particular program will guide the mother. माँ को मदद करेगा सबसे पहली बात, okay? The second objective of this particular session is हर माता पिता चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं सर्व गुणों से भरपूर हो, करेक्ट? दे वॉन्ट द बेबी टू बी वेरी हेल्दी, दे वॉन्ट देम टू बी वेरी वेल्दी एंड हैप्पी, इंटेलिजेंट होना चाहिए, सारे गुणों से भरपूर होना चाहिए। तो अगर बच्चों को ये सर्व गुण को देना है तो व्हाट इज द मैकेनिज्म, क्या करना पड़ेगा? तो ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है, राइट? द थर्ड ऑब्जेक्टिव इज to make the delivery a very very natural and easy process. ठीक है, ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव है जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर आज का हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आई ऑलरेडी मैं आज का जो सेशन है एक बहुत सुंदर कहानी के साथ शुरुआत करता हूँ। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बार क्या हुआ, रात में करीब 9:30 बजे का टाइम था, सो देयर वाज अ नॉक ऑन द डोर। तो माँ ने जाके जब दरवाजा खोला तो वहां पर तीन बहुत वृद्ध लोग बैठे थे, राइट? उनके चेहरे में बहुत तेज था, आंखों में इतनी रूहानियत थी। हमारे इन तीनों को देखकर बहुत खुश हुए, कहा कि आप कौन हो? तो पहले वाले ने कहा कि मैं धन का फरिश्ता, धन का देवदूत हूं, आई एम द मैसेंजर ऑफ वेल्थ। तो मैंने दूसरे से पूछा आप कौन हो? तो दूसरे ने कहा मैं सफलता का देवदूत हूं। तो मैंने तीसरे से पूछा आप कौन हो? तो तीसरे ने कहा मैं खुशियों का देवदूत हूं। तो माने का तीनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, आप अंदर आइए। तुमने कहा नहीं, इन तीनों में से किसी एक को चूज करना है। तुम्हारे कहा वेट करिए, मैं अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस करके आती हूँ। अंदर आकर अपने हस्बैंड को कहा कि वहां तीन फरिश्ते बैठे हैं, उनमें से किसी एक को चूज करना है। पहले वाला कौन है? धन। दूसरा सफलता, और तीसरा खुशियां। किसको चूज करना चाहिए? तो हस्बैंड ने सुना, पति ने सुना, काम करिए, आप सफलता के देवदूत को बुला लीजिए। तो पत्नी ने कहा तो सफलता सफलता करते रहते हो, घर का बजट मैं संभालती हूँ, कितने पैसे की जरूरत है? राइट, वे काम करिए, अब धन के देवदूत को बुला लीजिए। तो जैसे ही माँ दरवाजे की तरफ जाने लगी तो माँ ने देखा कि वहां बच्चे खेल रहे होते। तो माँ ने सोचा बच्चों से वेरीफाई कर रहे, तो बच्चों को पूछा, अच्छा बच्चे वो धन के देवदूत को बुलाएंगे तो चलेगा ना? तो बच्चों ने कहा नो मामा, अब खुशियों के देवदूत को बुलाइए ना। चलो बच्चों का दिल रखने के लिए माँ दरवाजे पर जाती है और तीसरे देवदूत को एड्रेस करती है, खुशी के देवदूत अभी आपका सिलेक्शन हो गया, आप अंदर आइए। और माँ देखती है जैसे ही वो खुशी के देवदूत अंदर आ रहे हैं उसके पीछे पीछे वो दूसरे दो भी चल कर आ रहे हैं। माँ ने कहा आपने तो कहा था कि एक को चूज करना, फिर आप तीनों कैसे चल दिए? तो खुशी के देवदूत ने कहा बहन जी अगर आपने धन सेलेक्ट किया होता ना तो आपके घर में सिर्फ धन गया होता, अगर आपने सफलता सेलेक्ट किया होता तो आपके घर में सिर्फ सफलता गया होता, लेकिन जहां खुशियां हैं वहां धन और सफलता परछाई की तरह आपके पास पहुंच जाएगी। जोर से तालियां बजाइए। तालियां क्यों बजाई? तालियां क्यों बजाई? कहानी अच्छी लगी। अच्छा वेरी गुड, और बताइए कहानी, तालियां क्यों बजाई? बोलते नहीं है पेरेंट्स, तालियां क्यों बजाई? अरे आपके घर में देवदूत आना ना। राइट, और कैसा देवदूत होगा? खुशियों का देवदूत। राइट, इसलिए उससे मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते। राइट, कहते हैं छोटा बच्चा दिन में 300 बार मुस्कुराता और खुश होता है, कितनी बार? जोर से बोलिए
300।
और आप सभी के माता पिता सारे दिन में कितनी बार मुस्कुराते हैं? खुश रहना बहुत बहुत जरूरत है। तो चलिए एक अच्छे स्लोगन के साथ स्टार्ट करेंगे, ये बहुत अच्छा गुरु मंत्र है, तो मैं इसको रीड करूंगा, मैं चाहूंगा आप मेरे पीछे पीछे इसको रिपीट करें। ओके, हियर वी गो।
इफ आई एम हैप्पी,
थोड़ा खुशी से बोलिए ना, चेहरे में थोड़ी इमोशन भी आने चाहिए ना। ओके,
इफ आई एम हैप्पी,
आई कैन मेक द वर्ल्ड हैप्पी
एंड
अ बेटर प्लेस टू लिव। ठीक है ना, हमको लगता है कि हमारे जीवन में इतना चैलेंजेस है, राइट, इतने प्रॉब्लम्स है, इतनी चुनौतियां हैं, हमको लगता है ये सारे चैलेंजेस जब ठीक हो जाएंगे ना तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन ये गलत सर्किट डायग्राम है। राइट सर्किट डायग्राम इज इफ आई एम हैप्पी देन आई बी एबल टू मैनेज माई चैलेंजेस बेटर। राइट ना, तो अगर इफ आई वॉन्ट टू मेक दिस प्लेस अ बेटर प्लेस टू लिव, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा देन व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है ना। बहुत अच्छा, मैं अपने स्टूडेंट से कोई भी प्रश्न पूछता जवाब नहीं मिलता तो स्टैंडर्ड जवाब देते, सर आउट ऑफ सिलेबस, सर आपने हमें नहीं पढ़ाया। बताइए व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, व्हाट्स लाइफ। कार में बहुत अच्छा परिभाषा रखता हूँ, ठीक है ना, और इस परिभाषा को लिखना, ऑल ऑफ यू शुड राइट इट डाउन। कितनों ने नोटबुक लेकर आए हैं? नोटबुक लेकर, ये कोई सत्संग नहीं है, यहाँ पर हम पढ़ाई कर रहे हैं। राइट, अभी अच्छी अच्छी बातें ना नोट कर और अच्छी अच्छी बातें लिखना। एक बहुत सुंदर डेफिनेशन बताता हूँ जीवन के बारे में, है ना, इसको हर दिन रिवाइज करना। जीवन क्या है, जिंदगी क्या है, तो किसी ने बहुत अच्छी बात बताई, कहा है देखो तो ख्वाब है जिंदगी, लाइफ इज अ ड्रीम, देखो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, लेकिन ईश्वर कहते हैं मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी, सदा मुस्कुराते रहो तो आसान है जिंदगी। तालियां तालियां तालियां, जितना हो सके खुश रहो, जितना हो सके मुस्कुरा। राइट, लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे जो होते हैं ना उनको खुशियां कब मिलती हैं? जब वो घूमते फिरते हैं। अक्सर करकर फिर बच्चों को खुशियां कम क्यों होती है? मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा भाई आप हमेशा क्यों नहीं मुस्कुरा पाते हो? तो सारे बच्चों ने कहा सर लॉट ऑफ स्ट्रेस, सर बहुत तनाव होता है। वेरी गुड, अगर हम इंडियन पेरेंट्स के स्ट्रेस ग्राफ को ड्रॉ करें, इंडियन पेरेंट्स के स्ट्रेस ग्राफ, तो जनवरी फरवरी में इंडियन पेरेंट्स का स्ट्रेस बढ़ने लगता है, मार्च अप्रैल में उनका स्ट्रेस एकदम पीक में जाता है, फिर धीरे 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 उनका स्ट्रेस कम होता है, भाई मार्क्स शीट को मेरे पेरेंट्स को इतना स्ट्रेस क्यों होता है? और मैं देखता हूँ जिस दिन बच्चों को एग्जाम्स होता है ना, उस दिन माँ का प्यार बच्चों से थोड़ा ज्यादा ही पड़ जाता है। उस दिन माँ क्या करेगी, बहुत प्यार से बेटे को नाश्ता बना कर देंगी। और बेटा कहेगा नो नो मम्मा मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, नो नो मुझे एग्जाम है 10 o'clock, मम्मा नॉट हंग्री एट ऑल, नो नो मुझे एग्जाम है 10 o'clock, और मम्मा तो नाश्ता भी खिला रही है, हॉर्लिक्स भी खिला रही है, बॉर्नविटा भी खिला रही है। तो बेटा कहता मम्मा आई डोंट अंडरस्टैंड, आप क्यों नहीं समझते हो? मालूम बेटा माँ को क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? बेटा माँ को यह समझाने की कोशिश कर रहा है कि मम्मा हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है। अब मम्मा लगे हुए हार्डवेयर का मेंटेनेंस कर रहे हैं। अच्छा बताइए इसमें हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है? विच इज द हार्डवेयर एंड विच इज द सॉफ्टवेयर? शरीर हमारा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर मन। आपके बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं, जहां जैसे इंटेलिजेंट पेरेंट्स मिले। यस, सॉफ्टवेयर हमारा मन है। आप सभी को पता होता है इन अ कंप्यूटर वायरस इज ऑलवेज अ सॉफ्टवेयर होता है, द इफेक्ट इज इन द हार्डवेयर। तो कौन सा वायरस है? डर, फियर, एंग्जाइटी, तनाव, गुस्सा। आपको पहले से गुस्सा तो नहीं आता होगा, ऐसा क्यों नहीं आता है? आप में से कितने पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों को बिल्कुल गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमेशा शांत होना चाहिए? सभी चाहते हैं। तो वो पहले हम स्वरूप बने और धीरे 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 फिर हमारे बच्चे भी स्वरूप बने। इसे इसे कहते हैं फॉर हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी बेबी। ओके, द सॉफ्टवेयर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई विल स्पीक अबाउट द सॉफ्टवेयर। इसे आप सभी को शिक्षक बनना पड़ेगा, इसका मन का। तो मन क्या है? मन बेसिकली इट्स अ टीम। व्हाट इज टीम? इट इज थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। अर्थात हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा दृष्टिकोण और हमारी स्मृतियां। देखिए जब आपका ये इंटरनल टीम बहुत पॉजिटिव होता है ना, ऑटोमेटिकली क्या होगा है ना, आपका मन शक्तिशाली बनेगा। जैसे ही आपका इंटरनल टीम कमजोर होता है तो आप देखेंगे हमको ये सारे वायरस आने लगते हैं। जिस तरह शरीर को अगर आपको दुरुस्त रखना है तो आपको दो बातें करनी पड़ेगी, एक व्यायाम करना होगा और दूसरा अच्छा भोजन लेना पड़ेगा। उसी तरह मन को भी व्यायाम की जरूरत है। तो मन का व्यायाम क्या है? व्हाट इज एक्सरसाइज ऑफ द माइंड? जोर से बोलिए। यस, मन का व्यायाम है मेडिटेशन। और मन का भोजन क्या है? अच्छे विचार। तो सारे दिन में चेक करना, ओके, Am I nourishing my mind with good positive thoughts? Right? इसलिए 6 to 9 months तक की यात्रा है ना, तो दो तीन चीज का परहेज करना। भोजन में क्या क्या परहेज करना है वो डॉक्टर शुभदा नील ने बताया, लेकिन मैं आपको परहेज बताता हूँ। राइट, सुबह सुबह उठकर न्यूज पेपर नहीं पढ़ना। और प्लीज जितना हो सके उतना टीवी को अवॉइड करना, ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखना। क्योंकि टीवी में अगर आपने जो आपको इनपुट मिला अगर वो पॉजिटिव है तो इट इज नरिशिंग योर माइंड और बच्चे को भी नरिश करेगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं इन दिस ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ योर मदरहुड एंड पेरेंटहुड, राइट, प्लीज आप भोजन करते वक्त एकदम टीवी स्विच ऑफ। क्योंकि अगर आपने इस समय टीवी के सामने बैठकर भोजन किया तो बाद में आप मुझे फोन करोगे, स्वामी भाई हमारे बच्चे हमेशा टीवी देखते रहते हैं, कुछ करो ना। बाय द टाइम इट्स टू लेट। पेरेंटहुड इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी को बहुत सहज भी हम निभा सकते हैं। इसलिए कुछ ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरत है, ठीक है? और अगर आप में वो दृढ़ता होगी तो आप देखेंगे आपके बच्चे जिंदगी भर जीवन भर बहुत सुरक्षित रहेंगे और वो हमेशा सही रास्ते पर चलेंगे, ठीक है? तो मन मन है, द माइंड हैज टू बी नरिश्ड विद गुड थॉट्स। सो इट इज थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। और क्योंकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन इज ऑल अबाउट मेमोरी, ठीक है ना? आप में से कितने चाहते हैं कि आपके बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी हो? हाथ उठाए, पूरा हाथ उठाए, राइट हैंड उठाओ, हाथ उठा के रखना, एक मिनट को एक्सरसाइज करो, ठीक है? आप में से कितने चाहते हैं कि आपके बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो? हाथ उठा के रखना। अब मैं स्टेटमेंट रीड करूंगा। कैन यू मेमोराइज द लिस्ट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स इन जस्ट 10 सेकेंड्स? क्या आप सात वस्तुओं को 10 सेकंड के अंदर याद कर सकते हो? क्या आप सात वस्तुओं को 10 सेकंड के अंदर याद कर सकते हो? स्वामी भाई वो सब तो ठीक है लेकिन हाथ दुख रहा है, याद करिए। गारंटी प्लस वारंटी आप लोग याद करोगे, ठीक है? ऊपर क्या लिखा है? जोर से बोलिए, प्यार से बोलिए। नीचे क्या लिखा है? किसके लिए बोल रहे हो? आपने नहीं बोला। अब मैं सात वस्तु बताता हूँ याद करना। वैसे भी आपने हाथ उठाया कि आपको याद रखेगा, ओके? क्या भी तो बोलिए, जामुन, पतंग, आसमान, पक्षियां, फूलों का बगीचा, छोटा सा बच्चा, तिलक। अब ये सात में से आप में से कितनों को कितना याद है मैं नहीं पूछूंगा। स्वामी सर थैंक यू वेरी मच सर, कितने अच्छे फैकल्टी निकले, सारा टेंशन खत्म कर दिया। बच्चों को टेंशन नहीं देना, बच्चों को टेक्नोलॉजी देना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो आज मैं आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करूंगा, ठीक है? क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एक शिक्षक होने के नाते मुझे ये फील होता है कि परिवर्तन होना चाहिए। क्या परिवर्तन होना चाहिए? वी शुड शिफ्ट फ्रॉम अ गुड मेमोरी टू अ पावरफुल माइंड। एक होता है अच्छा स्मरण शक्ति और दूसरा होता है शक्तिशाली माइंड। हमारा एजुकेशन सिस्टम पता है क्या कर रहे हैं? बच्चों को बहुत चीज याद करना होता है, वो याद कर लेते हैं, स्मरण शक्ति तक तो है, लेकिन क्या हमारा मन शक्तिशाली बन रहा है क्या? शरीर शक्तिशाली है कैसे पता चलेगा? जब आपका शरीर का जो टेम्परेचर है ना, विल बी विदिन नॉर्मल लिमिट्स, करेक्ट? थर्मोमीटर से पता चलता है। जैसे आपका शरीर का टेम्परेचर शूट होगा ना, इसका मतलब शरीर कमजोर है, यू नीड टू टेक रेस्ट, कुछ परहेज करना पड़ेगा। उसी तरह मन जो है कमजोर है कैसा पता चलेगा? जो मन का टेम्परेचर शूट होगा, मतलब कितना गुस्सा आता है, इट्स अ सिम्टम, इट्स अ सिग्नल। स्वामी सर नेवर गेट एंग्री, मुझे कभी गुस्सा आते ही नहीं क्योंकि मैंने अपने मन को शक्तिशाली बनाया है। आपने हमेशा सुना ना, मन दुरुस्त तो तंदुरुस्त, मन को दुरुस्त रखना है। और मन को दुरुस्त रखने की टेक्नोलॉजी है मेडिटेशन। और आज मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू कि मेडिटेशन क्या होता है और उसको हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब वेरी सिंपल टेक्नोलॉजी, ये क्या है? जोर से बोलिए, मोबाइल। ये मोबाइल की ना मैक्सिमम जो मेमोरी है ना, कार्ड में स्टोर की गई है। कार्ड को क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड या सिम कार्ड। अच्छा, अगर मैं अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकाल दिया तो ये बन जाएगा डब्बा बॉक्स। एक काम करता हूं, अपने मोबाइल से सिम कार्ड निकालकर आपके मोबाइल पे फिक्स करता हूं, तो क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ मेमोरी। आप मेरे SMS मैसेज पढ़ सकते हो, आप मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट देख सकते हो, कोई भी अगर मुझे फोन करेगा तो रिंगटोन मिलेगा आपके सिम। हमको पता है मोबाइल की मैक्सिमम मेमोरी स्टोर होती है सिम कार्ड पर। हमें यह भी पता है कंप्यूटर की सारी मेमोरी स्टोर होती है उसके हार्ड डिस्क पर। उसी तरह बताइए, जो सात वस्तु मैंने आपको बताया आपने कहां स्टोर किए? कहां स्टोर किए? जगह मालूम नहीं चाहिए। बहुत सारे बच्चे जब स्कूल से घर आते ना, घर आते ही साथ अपना बस्ता यहां फेंकते हैं, जूता वहां फेंकते हैं और दूसरा दिन सुबह कुछ ढूंढने लगते हैं। तो मां पूछती है, बेटा क्या ढूंढ रहे हो? और बेटा जवाब देते, मामा मैं अपना राइस मोजा ढूंढ रहा हूं मामा। तो मम्मा मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा याद करो ना किस दिशा में फेंका था, ईस्ट में फेंका था, वेस्ट में फेंका था, जगह मालूम नहीं थी। एक बार मैं 10वीं कक्षा के बच्चों को सेशन लिया, सारे बच्चे बैठे थे, मैंने कहा बच्चों पापा के लैपटॉप के अंदर कौन से ड्राइव में कंप्यूटर गेम स्टोर किया आपको मालूम होना चाहिए, ताकि उस ड्राइव से कंप्यूटर गेम स्टोर निकाल सको, खेल सको, यस और नो? बच्चों ने कहा यस। मैंने कहा उसी तरह एग्जाम जाने के पहले कितना फॉर्मूलास, कितना प्रश्न उत्तर पढ़ते हो, कहां स्टोर करते हो? एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता है, स्वामी सर दिल में स्टोर करता हूं सर। मैंने पूछा बीच में दिल कहां था क्या? बोला सर जब मैं एग्जाम लिखने जाता हूं ना, मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है सर। मैंने कहा वेरी क्यूट आंसर। आप सभी तो पढ़े लिखे पेरेंट्स हो ना, कहां स्टोर करते हो? कहां स्टोर करते हो? जगह मालूम नहीं चाहिए। जिस तरह मोबाइल में एक सिम कार्ड है ना, हम सभी के पास भी एक सिम कार्ड है, SIM। और S means understanding the self, कि मैं कौन हूं। कहते हैं ना, टू नो थाइसेल्फ इज एजुकेशन, अपने आप को जानना ही शिक्षा है। प्रश्न उठता है कि क्या मैंने अपने आप को जाना है। हम लोग हमेशा है ना बच्चों को डायलॉग बोलते हैं, बच्चों यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन सेल्फ क्या है आज तक नहीं बताया। और एक प्रश्न जो हर बच्चे के मन में आता है, और हर बच्चा शायद आपने भी पूछा होगा लेकिन शायद आपको याद नहीं होगा वो बचपन की स्मृतियां, लेकिन हर बच्चा जरूर अपने माता पिता से पूछता है एक प्रश्न, और उसका प्रश्न होता है हाउ डिड आई कम इन दिस वर्ल्ड, मैं इस धरती पर कैसे आया, ये प्रश्न पूछेंगे। इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरत है, उसका जवाब बताना भी बहुत बहुत जरूरत है, राइट? हम आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं जिस वीडियो के द्वारा आपको पता चलेगा कि आखिर मैं हूं कौन, और ये सत्यता को महसूस करना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो। आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं, रूह कहते हैं, हम अपनी इंजीनियरिंग भाषा में उसको एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा, पॉइंट ऑफ लाइट। तो सारी की सारी जो मेमोरी जो स्टोर होती है वो वहां पर होती है, जैसे राइट जैसे कि एरोप्लेन होता ना, उस एरोप्लेन की सारी मेमोरी कहां स्टोर होती है? ब्लैक बॉक्स में। इट इज नॉट ब्लैक इन कलर, इट्स ऑरेंज इन कलर। 150 पैरामीटर स्टोर कर सकते हैं। उसी तरह नॉलेज ऑफ द सेल्फ, इसे कहते हैं एजुकेशन इज नॉट द फिलिंग ऑफ द वेसल। बहुत सारे इंफॉर्मेशन को याद करना कोई शिक्षा नहीं है, बट इज इग्नाइटिंग द लाइट विद इन, उस प्रकाश स्वरूप को अनुभव करना, राइट? सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस का हिंदी अनुवाद क्या है? आत्मविश्वास। तो सारी मेमोरी स्टोर होती है बिंदी में, पॉइंट ऑफ लाइट में। आप बड़ों को समझने में थोड़ा तकलीफ होगा लेकिन आपके बच्चे समझ जाएंगे थैंक्स टू पेन ड्राइव, छोटू 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 नैनो टेक्नोलॉजी। आज एक छोटे से चिप में कितनी मेमोरी स्टोर होती है विज्ञान बताता है, करेक्ट? सारी मेमोरी स्टोर होती है जिंदगी में, पॉइंट ऑफ लाइफ में, आत्मा में। अगर स्वामी सर का सिमकार्ड यहां से निकला ये बन जाएगा डब्बा, फिर अगर स्वामी सर को फोन करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, दिस नंबर इज आउट ऑफ कवरेज एरिया है, एक हफ्ता और ट्राई करो, आपको बहुत सुंदर संदेश मिलेगा, ये नंबर अस्तित्व में नहीं है। और स्वामी सर का सिम एक छोटे से बच्चे में जाता है, सारी की सारी मेमोरीज ट्रांसफर हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे, राइट, ये बहुत सारे नंबर्स को याद करना, वस्तुओं को याद करना, फॉर्मूलाज को याद करना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेमोरीज की सबसे बड़ी बात जो इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके पास जो दिव्य शक्ति आ रही है ना, वो अपने साथ बहुत सारी स्मृतियों को लेकर आ रही है। इससे आप कुछ समय पहले अनुभव करेंगे, छोटा सा बच्चा होगा ना आप देखेंगे, राइट, बहुत कुछ समय आप देखेंगे बहुत गंभीर होगा, अचानक वो मुस्कुराने लगेगा, क्या हो रहा है? उनके जो पास्ट मेमोरीज है ना वो रिकॉल हो रहे हैं, लेकिन ऑर्गन छोटे हैं इसलिए वो बोल नहीं पाते, और धीरे 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 नए मेमोरीज ओवरलैप हो जाते हैं।
तो हमें क्या समझना है कि वो जो आत्मा आपके पास आ रही है ना, वो आत्मा अभी कोई ना कोई घर छोड़कर वो आपके पास आ रही है। वो आपके पास ही क्यों आई है? Why it has come to you? और कहीं क्यों नहीं गए? जैसे बिल्डिंग होती ना, बिल्डिंग में अगर आपको कोई जरूरत होता है तो बिल्डिंग में आप सपोज किसके घर में जाओगे? उसी घर में जाओगे जहां पर आपकी पहचान है, करेक्ट? सपोज उस बिल्डिंग में चार ऐसे घर है जहां पर आपकी पहचान है, और अगर आपको कोई जरूरत फील होगा तो चार घर में कौन से घर में आप जाओगे? तो चारों में से ऐसा घर ढूंढोगे जहां पर आपका सम्मान किया जाता है, आपका रिस्पेक्ट है, आपका रिकॉर्ड है, आपको लगता है यहां पर मेरे मन और दिल को सुकून मिलेगा, करेक्ट? उसी तरह वो जो आत्मा आ रही है, दैट इज ऑल्सो कमिंग टू यू, वो आपके पास आ रही है क्योंकि उनको पता है कि यहां इस घर में आने से मेरा स्वमान की रक्षा होगी और मुझे यहां पर बहुत हीलिंग मिलेगा। एक होता है ट्रीटमेंट और दूसरा होता है हीलिंग। सो ट्रीटमेंट इज एट द फिजिकल लेवल, हीलिंग इज एट द मेंटल एंड इमोशनल लेवल। भावनात्मक स्तर पर हीलिंग होना बहुत बहुत जरूरत है। इसे हीलिंग का अर्थ क्या होता है? हील थाइसेल्फ। स्वस्थ का अर्थ क्या होता है? स्व के अस्तित्व में टिकना, उसको स्वस्थ कहते हैं, ठीक है? तो सारी मेमोरी स्टोर होती है बिंदी में। तो चलिए राइट, अब अपने सेल्फ इमेज में टिकते हैं। वैसे हर एक का अपना सेल्फ इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी की शादी में जाते हो ना, तो दूल्हा दुल्हन के साथ आपका फोटोग्राफ किया जाता है। फिर एक हफ्ते के बाद अगर आप उनके घर जाते हैं ना, तो अपना एल्बम दिखाते हैं। जैसे आपका हाथ में एल्बम मिलता है, आप क्या करते हो? सबसे पहले अपना फोटो ढूंढो, किधर है, किधर है? दूल्हा एक तरफ, दुल्हन दूसरी तरफ। हाँ, मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। सेल्फ इमेज इज सो इंपॉर्टेंट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन लुकिंग गुड। हाउ आर आई लुकिंग? मैं कैसे दिखता हूँ या दिखती हूँ? अब लुकिंग गुड से फीलिंग गुड पर आना, भावनात्मक स्तर, अपने बारे में अच्छा सोचना। अगर आप अपने बारे में अच्छा सोचोगे, श्रेष्ठ स्वमान में रहोगे, सो द सोल दैट इज कमिंग टू यू विल ऑल्सो फील वेरी वेरी गुड, राइट? तो चलिए राइट, तो कुछ समय के बाद अगर आपके बच्चे पूछेंगे कि मामा मैं कौन हूं, तो आप क्या करना? आप अपना हाथ बच्चे के सर पर रखना, बहुत खुशी से मुस्कुराते हुए कहना, बेटा आपको पता है आप कौन हो? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं? तो बहुत प्यार से हाथ रखकर कहना, बेटा आप हो तारे जमीन पर। कौन हो? ट्विंकल ट्विंकल स्टार। बचपन में एलकेजी सिलेबस में पढ़ते थे ना, ये बेसिकली ऑल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो आप क्या करना? मेडिटेशन इज द फर्स्ट स्टेप। हर दिन सुबह उठना, अपना चेहरा दर्पण में देखकर और एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड सी योरसेल्फ अ स्पार्कलिंग डिवाइन पॉइंट ऑफ लाइट। सभी बोलिए, आई एम अ हैप्पी एंड पावरफुल स्टार, राइट? ये आजकल बच्चों को स्टार बनना बहुत अच्छा लगता है, फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार, है ना, सुपर स्टार। उस दिन प्रोग्राम कर रहा था, एक खड़े पर कहता सर रॉक स्टार ऑल्सो सर, कहते जो स्टार बनना है बन। उनको बनाएगा कौन? पेरेंट्स एंड टीचर्स। और यहां से शुरुआत होती है। जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना, उस बिल्डिंग की सारी शक्ति डिपेंड करती है उसके फाउंडेशन पर, नींव पर, दिखाई नहीं देता है। उसी तरह किसी भी बच्चे का जो व्यक्तित्व है, इट डिपेंड्स अपॉन द 6 to 9 months विद द मदर इज कैरिंग द बेबी। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे यहां पर डिवाइन गर्भ संस्कार का जो कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अपना कोई बहुत प्राचीन संस्कृति है। आपने देखा होगा ये जो गर्भ संस्कार का जो प्रोग्राम है, बहुत प्राचीन है। बस आज हम उसको बहुत इजी कर कस्टमाइज करके बता रहे हैं, बहुत इजी कर आप बता रहे हैं, ताकि वो दिव्य संस्कार आपके आप लेकर आए। क्योंकि आजकल मैं बच्चों को देखता हूं चारों तरफ, राइट? हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे में दिव्य गुण हो, लेकिन वो दिव्य गुण कैसे आए मान? पेरेंट्स के साथ हमारे बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव हैं, बहुत ये हैं, बहुत वो हैं। आप भी बच्चों में दिव्य गुण, दिव्य संस्कार चाहते हो ना, राइट? कुछ गुणों का आप जिक्र कर सकते हो? सम क्वालिटीज विच यू वॉन्ट योर चाइल्ड टू बी। डोंट से आउट ऑफ सिलेबस, आपके बच्चे में कौन से गुण चाहिए? वाओ, वेरी गुड, वी स्टार्टेड। हर गुणों की जननी मां पवित्रता। मैं कुछ गुण आपको बताऊंगा, ठीक है? एक गुण सुनते रहना, जब सुनोगे तो आप देखना कैसा आपको फील होता है। पवित्रता,
शुद्धता, स्वच्छता, सत्यता, निर्भयता, निडरता, धैर्यता, दृढ़ता, रमणीयता, गंभीरता, प्रसन्नता, मधुरता, सरलता, निपुणता, सहनशीलता, अंतर्मुखता, गुणग्राहिता। तो कैसा लगता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अगर ये सारे गुण अगर बच्चों में आ गए तो सो नाइस। तो क्या करना पड़ेगा, बच्चों में अगर ये सारे गुण आना है तो द फर्स्ट द मदर हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्मृति। इसलिए आपने देखा होगा भारत के प्राचीन संस्कृति में कहते हैं, महाभारत में बताते हैं राइट, उसमें दिव्य गर्भ संस्कार का उल्लेख आता है अभिमन्यु को। कहते हैं अभिमन्यु के जन्म के समय पर है ना, पूरा उनको उसकी मां ने पूरा वो वंडरफुल इनपुट किया। इसलिए मैं आपको बताता हूं, अर्जुन वाज अ हीरो। अर्जुन का मतलब क्या होता है, अर्जुन अर्थात जो ज्ञान का अर्जन करे उसको अर्जुन कहते हैं। हम लोग यहां पर अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं। तो महाभारत में राइट एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, एक श्लोक बताते हैं। मैं चाहता हूं ये श्लोक आप बहुत ध्यान से सुनना, और जब ये सुन रहे हो तो आप ये फील करना है इसके द्वारा किसको सुना रहे हो, द बेबी विद इन मी। सुनना, ये बहुत अच्छा है। अब ये हमने संस्कृत श्लोक तो सुना, लेकिन जब तक इसका अर्थ समझ में नहीं आया तो इसका अर्थ को समझना बहुत बहुत जरूरत है राइट। और यहां पर इस श्लोक के द्वारा आत्मा के बारे में बताया गया है कि यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जन्मता है ना तो मरता है, आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है राइट। और इसलिए ये बहुत पुरातन है और बहुत बहुत आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती रहती है। द सोल नेवर टेक्स बर्थ एंड नेवर डाइज एट एनी टाइम, नॉट दैट इट कम्स टू बी अमर। आत्मा अमर है, आत्मा अविनाशी है। दिस इज चैप्टर 2 वर्स 20। मैं आपको कुछ एक इनपुट्स बस आज मैं दूंगा, लेकिन इस प्रकार की अच्छी अच्छी बातें अगर आप सुनेंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे में होते हुए संस्कार जरूर जरूर आएंगे। एक और मैं श्लोक सुनाता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, फिर आपका अर्थ भी मैं समझाता हूं। पहले तो ध्यान से सुनना।
कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति
मतलब क्या है, जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन और वृद्धावस्था होती है वैसे अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं फिर धीरे 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 बड़े होकर है ना हम वृद्ध अवस्था में जाते हैं फिर हमें छोटे बच्चे बनना। दिस इज अ साइकिल विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, जस्ट एज अ फिजिकल बॉडी ऑफ द एम्बॉडीड बीइंग इज अ प्रोसेस ऑफ चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज, सिमिलरली द ट्रांसमाइग्रेशन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर द वाइज आर नेवर डिल्यूटेड राइट। दिस इज चैप्टर 2 वर्स 30 इन सांख्य योग या ज्ञान योग। इसे ये बहुत अच्छी बात है, आप सुनना और फिर मैं इसका अर्थ समझाऊंगा। और जैसे जैसे आप सुन रहे हो तो यू हैव टू बी इन अ स्टेट ऑफ सोल कॉन्शियसनेस राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जैसे मनुष्य जो होते हैं पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीव आत्मा है ना, वस्त्र कौन सा है, हमारा शरीर, पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर की प्राप्ति होती है राइट। वैसे इंजीनियरिंग भाषा में हम लोग एक बहुत अच्छी बात बताते हैं, हम लोग कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा। कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन अर्थात शरीर, बीइंग अर्थात उसमें रहने वाली वो चैतन्य शक्ति,
The being part is what is very, very important. Just as a man giving up old, worn-out garments accepts another new apparel, in the same way the embodied soul giving up old and worn-out bodies quickly accepts new bodies. और यहाँ पर मैं एक चीज मैं आपको जरूर जरूर बताना चाहूंगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अक्सर करकर ऐसे जो स्टेज पर ना अक्सर करके चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो पेरेंट्स हो या हस्बैंड और वाइफ आपस में बहुत कम्युनिकेशन होता है और कम्युनिकेशन में अक्सर ये आता है कि डू वी नीड अ बॉय और अ गर्ल. अक्सर प्रेफरेंसेस जेंडर प्रेफरेंसेस होने लगते हैं. आपको ध्यान रखना ये कितना डीप इमोशनल इंपैक्ट बच्चे में करता है. मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं. राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर वाज अ फैमिली, उसने अपने बच्चे को लेकर आए. दो बच्चे थे. द फर्स्ट वन वॉज अ बॉय. ओके, व्हेन दे वर गोइंग फॉर अ सेकेंड चाइल्ड तो हस्बैंड वाइफ आपस में डिस्कस करते थे कि वी नीड अ गर्ल, वी नीड अ गर्ल. राइट, अब घर के अंदर जब बॉय का शरीर बन रहा था तो मां ने कुछ समय के बाद जब मुझे एक बार आकर बताया कि ये जो दूसरा लड़का है ना, हमेशा मैं जो बोलती हूं उसके जस्ट विपरीत करता है. एग्जैक्टली ऑपोजिट. अगर मां कहेगी वहां जाए तो वो इधर आएगा. मां कहेगी एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट द मदर इज सेइंग. हमेशा गुस्से में, हमेशा तेवर में. जब मां मेरे पास लेकर आए तो मैंने कहा डॉक्टर्स को दिखाया. बता नहीं डॉक्टर्स ने कहा ओके, बट देयर इज सम बिहेवियरल इश्यूज. थोड़ा डिस्कस करने के बाद पता चला कि व्हाट एग्जैक्टली द डीप इमोशनल इंपैक्ट इज. कि जब व्हेन द बॉय वाज इन द मदर्स वूम हमेशा माता पिता डिस्कस करते थे कि वी नीड अ गर्ल, वी नीड अ गर्ल. राइट, अब जो शरीर बन रहा है वो बॉय का, मतलब आपने क्या किया, उस बच्चे को जन्म लेने के पहले आप रिजेक्ट कर रहे हो उसे. मैंने उस मां से पूछा कि जैसे ही आपने बच्चे को देखा व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन. बोले जैसे ही मैंने बच्चे को देखा इमीडिएटली संकल्प आया, अरे मुझे तो लड़की चाहिए थे, अब ये लड़का कैसे चुनू. मतलब आपने इतना डीप इमोशनल इंपैक्ट ले लिया. जैसे ही मैंने कहा तो मां बहुत जोर से रोने लगी. बोले स्वामी भाई सचमुच मैं अपने उस बेटे से बहुत प्यार करती हूं, बट द इमोशनल डीप इमोशनल इंपैक्ट ऑलरेडी हो गया है. इसे बहुत ज्यादा समय के बाद इंटरवेंशन करने के बदले अभी से तो क्या करना हमें समझना है कि जो आपके पास आ रहे हैं वो एक आत्मा है, वो दिव्य शक्ति है. कभी वो मेल चोला ले सकती है, कभी वो फीमेल चोला ले सकती है. जैसे मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन और मास्टर्स में बिकॉज ऑफ एकेडमिक हमारा प्रोग्राम था तो आई डिड माई ओन पास्ट लाइफ रिग्रेशन. मैंने अपना पिछले जन्मों को देखने का प्रयास किया क्योंकि वो मेरा प्रोजेक्ट था, वो मेरा सिलेबस में था. और मैंने अपने काफी जन्मों में मैंने अपने आप को फीमेल के रूप में देखा है. तो आत्मा वो शक्ति है, वो मेल चुना या फीमेल चुना हो सकती है. इसलिए प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कभी भी आपस में जेंडर प्रेफरेंस नहीं. आप क्या हो, आप बहुत अच्छे ट्रस्टीज हो. एक बहुत अच्छे ट्रस्टी मतलब संभाल करने के, एक बहुत अच्छी अमानत आपके पास आ रही है, उस अमानत को आपको संभालना है. और आप केपेबल हो उस अमानत को संभालने के लिए. ऐसा जब आप वो फीलिंग लेकर आएंगे आप देखेंगे द जर्नी ऑफ पेरेंटहुड वुड एक्चुअली यू विल रियली एंजॉय इट. आप कहेंगे स्वामी भाई ये सब आप हमको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पुराने जमाने में हमारे भारत के प्राचीन संस्कृति में हमारे दादा दादियां नाना नानी पेरेंट्स जो है ये सब बच्चों को बताते थे. आजकल ये नहीं बता पा रहे क्योंकि देयर इज न्यूक्लियर फैमिलीज. इसलिए इनपुट देना बहुत बहुत जरूरत हम फील करते हैं. समझ में ना, तो शरीर क्या है, मोबाइल है, घूमता फिरता रहता है. आत्मा जो है वो सिम है, चार्जर कौन है. उस दिन मैं प्रोग्राम कर रहा था बच्चों के, मैं बोले चार्जर कौन है, एक सोना खड़ा कह रहा सर भोजन सर. हार्डवेयर की चार्जिंग की बात नहीं कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर की चार्जिंग की बात कर रहा हूं. खाते रहना भोजन. चार्जर कौन है, चार्जर इज ऑलमाइटी गॉड ईश्वर. जैसे छोटा बच्चा आता है ना, उस बच्चे को देखकर हम उसके माता पिता को आइडेंटिफाई करते हैं और कहते हैं ना आप अपनी मां पर गए हो, आप अपने पिता की तरह देखते हो. उसी तरह हम सभी अगर ज्योति बिंदु आत्मा है तो हम सभी आत्माओं का पिता वो परम ज्योति. आपके बच्चों को एलकेजी में सिखाया जाएगा ट्विंकल ट्विंकल, जोर से बोलिए, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, यू कौन है, यू कौन है, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. वो जो सितारा है ना तारे जमीन पर, वो अपने उस पारलोक के माता पिता को याद कर रहा है. हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, सूर्य चांद सितारों से दूर एक हमारा अपना घर है, राइट। हम सभी आत्माओं का घर जिसको परमधाम कहते हैं, वहां पर हम सभी आत्माएं रहते थे और हम सभी आत्माओं के पिता, लाइफ का डायमंड, ये एक ही जी का सिलेबस है, लेकिन हमने कभी अर्थ नहीं समझा। हम सभी आत्माओं के पिता वो परम ज्योति परमात्मा और वो सर्व गुणों का सागर है। जैसे कितना दंग का रंग लग जाता है, अब हमेशा अपने बच्चों के अच्छे बच्चों के संग में रहना, उसी तरह आपका मन और बुद्धि, मन कहां पर लगेगा उसके सारे क्वालिटीज जो है आप में आने लगेंगे, संग का रंग लगता है। तो परमात्मा जो है वो गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। जितना हम मन के द्वारा उनको याद करेंगे उतना आपका मन शक्तिशाली बनेगा, वो सर्व गुणों से आप संपन्न है। इसे योग क्या है, योग मतलब कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, जिस तरह योग अर्थात बिछड़ना, योग अर्थात संबंध जोड़ना, राइट। और ये सारे जो गुण है, इसे भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया गया, हम थोड़ा सा सुनते हैं उस परमात्मा के बारे
में।
उसमें ये बताया है कि परमात्मा के बारे में कहा है कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। इसलिए क्या आपने देखा, वो भगवद गीता में आपने देखा कि जब अर्जुन को बात समझ में नहीं आती है तो अर्जुन को क्या दिखाते हैं, अर्जुन को कहते हैं भगवान का विराट स्वरूप दिखाते हैं। अर्जुन विराट स्वरूप में क्या देखता है, तेजोमय प्रकाश, तेजोमय प्रकाश। और इसलिए अभी हम जो सभी है ना ज्ञान को अर्जन करने वाली हम आत्मा है, और परमात्मा आकर हमें सच्चा गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। बाप माता पिता कितने भाग्यशाली, और आपसे ज्यादा आपके बच्चे कितने भाग्यशाली हैं, आपके बच्चे आपको ऐसे दिव्य स्थानों पर लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जिस बच्चे का जैसा संस्कार होता है ना वो उसको वहां खींचता है। तो भगवत गीता का जो रियल ज्ञान दाता है वो हम सभी आत्माओं के पिता परम ज्योति परमात्मा। और कैसे सर्वधर्मानी है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो हमारी बहुत अच्छी टीचर थी, बीच बीच में गीत गाती थी, सबका मालिक एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम सब भाई भाई। और मैं सामने बैठकर मुझे बहुत टेक्निकल कंफ्यूजन होता था, मेरे माता पिता अलग, आपके माता पिता अलग, हम लोग भाई भाई कैसे बनते हैं। लेकिन वो क्लैरिटी मिली जब मैंने ये बात सीखा। आप देखेंगे हिंदू धर्म उसको शिवलिंग के रूप में याद करते हैं, आप शिवलिंग को बहुत ध्यान से देखो, उसमें तीन लकीर होता है, लकीर के बीच में बिंदु दिखा। अभी शिवरात्रि आने वाली ना, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, सदैव अपने बच्चों के प्रति कल्याण की भावना रखते, उसको सदा शिव कहते हैं। गुरु नानक हमेशा हाथ ऊपर उठाकर कहा सत नाम ओंकार, सत्य एक निराकार परमात्मा है। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, गॉड इज लव, गॉड इज लाइट, भगवान प्रकाश स्वरूप है। हमारे स्वामी भाई बहने क्या कहते हैं, अल्लाह एक नूर है, नूर था मां के लिए ना, ये बेटी मेरे आंखों का नूर है, नूर मीन तारा ज्योति प्रकाश। भले हम कोई भी धर्म जाति की क्यों ना हो, किसी न किसी रीति से उस ईश्वर को परमात्मा को याद करें, दिस इज द डिवाइन गर्ल संस्कार। जब भी आप ऐसा फील करो कि यस मैं चमकता हुआ दिव्य शक्ति हूं, और मुझ आत्मा के पारलौकिक मानसिकता वो परम शक्ति करना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड राज योग। राज मतलब रहस्य सीक्रेट, और राज मतलब मास्टर द किंग ऑफ योर ओन इमोशंस, राइट। एंड दिस इज द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ राज योग, समझ में ना। तो याद मतलब क्या है, याद मतलब बहुत सारी वस्तुओं को सिर्फ याद नहीं करना, लेकिन याद मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट उस ईश्वर की स्मृति, उस ईश्वर को याद करना बहुत जरूरी है। जब हम उनको याद करेंगे ऑटोमेटिकली मन शक्तिशाली होगा, समझ में ना। अब ये सात वस्तुओं को कैसे याद करें, बहुत बहुत सिंपल है, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ये जो कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है, दिस कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ बाइनरी मशीन लैंग्वेज जीरोस और वन। अगर मुझे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना होगा तो मैं कुछ भी बताऊंगा ना तो डीकोड करता है जीरोस और वन, राइट। उसी तरह What is the language of the mind? मन की भाषा कौन सी है? ये समझना बहुत जरूरत है. जैसे कम्युनिकेशन के लिए भाषा बहुत जरूरत है. जैसे माँ का बच्चे से बहुत प्यार होता है, तो अगर माँ और बच्चे दोनों इंग्लिश जानते होंगे तो माँ क्या कहेगी? माई डियर बेबी आई लव यू. अगर दोनों हिंदी जानते होंगे तो माँ क्या कहेगी? बच्चे मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ. अगर दोनों बंगाली जानते होंगे तो माँ क्या कहेगी? अमे के तुम्हें पालो बच्ची. अगर दोनों मलयालम जानते होंगे तो माँ क्या कहेगी? ज्ञान निर्दत वाले कुंड स्नेहिकनंद. करेक्ट. दोनों अगर जो लैंग्वेज जानते होंगे वो कम्युनिकेट करेंगे. अब आपकी अवस्था में द बेबी इज देयर इन द वूम. अब माँ को कम्युनिकेट करना आई लव यू, तो कैसे कम्युनिकेट करेगी?
स्वामी सर आउट ऑफ सिलेबस सर.
थोड़ा सोचिए ना कैसे कम्युनिकेट करेंगे. अब माँ को कम्युनिकेट करना है, कैसे करेंगे? मन के द्वारा करेंगे. तो मन की भाषा कौन सी है? इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल, फ्रेंच, जापानीज, पोर्टुगीज, कौन सी भाषा? ये प्यार तो है ही ना, माँ का तो बच्चे से प्यार है ही, लेकिन उसको कम्युनिकेट करना ना. हाँ, मन की तीन भाषा है और ये तीन भाषा को आपको यूज करना है. द फर्स्ट लैंग्वेज इज म्यूजिक, संगीत. हमारी जीवन रूपी यात्रा ही संगीत के साथ स्टार्ट होती है. थक 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 माँ की दिल की धड़कन. ऐसे समय पर अच्छे अच्छे संगीत सुनो. लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनो. जो गीत आपको पसंद आए ना वो जरूर जरूर सुनो. और हमारे पास एक किच है, उसके पे अच्छी अच्छी गीत लगाए, अच्छी अच्छी गीत सुनना. और अगर आप बहुत लाइक, मुझे ना फ्लूट बहुत अच्छा लगता है, फ्लूट संतूर. और आप एक्सपेरिमेंट करना, आपको जो बहुत अच्छा म्यूजिक लगता है ना वो आपको सुनते रहना. और जैसे छोटू बाहर आएगा, जैसे वो हाइपर एक्टिव होगा ना, तो आप ये म्यूजिक बजा लो छोटू से. हर जो चीज आप कर रहे हो इज एक्चुअली गेटिंग ट्रांसफर टू द बेबी. राइट. फर्स्ट लैंग्वेज इज म्यूजिक. सेकेंड लैंग्वेज. अच्छा, बच्चों को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पसंद आता है, कलर टीवी? क्योंकि माता पिता को कलर टीवी पसंद आता है. राइट. सेकेंड लैंग्वेज इज कलर, रंग. इसे आप देखो छोटे छोटे बच्चों का क्लासरूम जाकर देखो, इतना रंगीन होता है, इतना कलरफुल. देन यू कम टू माई इंजीनियरिंग क्लासरूम, नो कलर्स. रंग बहुत अच्छा, ये मन की भाषा है. इसलिए क्या करना है, ऐसे समय पर आप बहुत अच्छा पेंटिंग करते हो. यू शुड लव पेंटिंग. पूरा समय टीवी देखकर वो ना अपने खराब करने के बजाय यूटिलाइज योर टाइम कंस्ट्रक्टिवली पेंटिंग के द्वारा. और ये पेंटिंग क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा. एंड थर्ड इज इमेजेस, चित्रों की भाषा. इमेजेस. आप जो चित्र देखते हैं वो चित्र मन के द्वारा कम्युनिकेट हो रहा है. तो म्यूजिक, कलर एंड इमेजेस, ये तीन जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है मन की. राइट. अब देखो, अगर हमने ये जो सात वस्तु बताए थे ना, याद करना बहुत मुश्किल था. अब एक काम करते हैं, मन के द्वारा में एक चित्र बनाते हैं. सभी ध्यान से देखना. एक दिन मैं जामुन के खेती में गया, बहुत सारे जामुन खाए. देख रहे हो ना मन के द्वारा चित्र. फिर हमने क्या किया, हम सब ने मिलकर पतंग उड़ाया. पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया. हमने देखा आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे. पंछियां उड़ते उड़ते फूलों के बगीचे में पहुंचे. वहां एक छोटा सा बालक बैठा था और उनके मस्तक में तिलक था. चलो रिमाइंड करते हैं. अच्छा, कौन से खेती में गए और क्या खाया? जोर से बोलिए. फिर क्या उड़ाया? पतंग. उड़ते उड़ते कहां टिका? आसमान. आसमान में कौन उड़ रहे थे? पंछी. सारे पंछी कहां पहुंचे? फूलों के बगीचे में. वहां कौन बैठा था? बालक. और उनके मस्तक में क्या था? नंबर वन जामुन, नंबर टू पतंग, नंबर थ्री, नंबर फोर पंछिया, नंबर फिफ्थ फूलों का बगीचा, नंबर सिक्स बच्चा, नंबर सेवन. सभी अपना हाथ ऐसे रखें, शर्माइए नहीं, रखो रखा. अभी अपने पीठ को थप थपाओ. शाबाश शाबाश, वेरी गुड मेमोरी, वेरी गुड मेमोरी. याद रखने की बात याद हो गया. जब मैं सात वस्तु बता रहा हूं, मैं देख रहा था कुछ भाई बहन को रट रहे थे. जामुन 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 पतंग, जामुन पतंग, जामुन पतंग, जामुन पतंग. आसमान ऐसी याद नहीं होता. और आजकल के मदर्स है बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते, जोर से पढ़, जोर से पढ़, इतनी जोर से पढ़ तेरी आवाज पूरी किचन तक सुनाई देनी चाहिए। और बच्चे चिल्लाते जामुन पातर, मदर इज वेरी हैप्पी, कुछ तो बोल रहा है, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये मन का चित्र बनने लगता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये चित्र बहुत ध्यान से देखना, और खास करके जो बहुत इंपॉर्टेंट जो है, इस चित्र को देखकर हमको एकाग्रता भी बढ़ेगी। और इस समय अगर आपने कुछ भी कार्य एकाग्रता से किया ना, आपकी बच्चों की कॉन्सेंट्रेशन पावर इंक्रीज लाइक एनीथिंग, बिकॉज नाउ द फाउंडेशन इज बीन लेड। ओके, ऐसा क्यों होता है कि क्लास में कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं और कुछ बच्चे बहुत मेहनत करता है। विज्ञान, आई बिलोंग टू अ साइंस एंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, पर अभी मन के ऊपर काम कर रहा हूं। इस संसार में हर घटना जो हो रही है उसके पीछे विज्ञान, उसके पीछे कारण है। कोई बिल्डिंग 50 इसका क्यों इतना स्ट्रांग रहता है, और कोई बिल्डिंग हिलता क्यों है, फाउंडेशन, नींव। और आप लोग यहां पर आ रहे हो ना, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ वेरी वेरी पावरफुल फाउंडेशन। इससे फील गुड अबाउट दिस सेशन, राइट। अच्छा देखिए, अब इस चित्र को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। जामुन दिख रहा है, जामुन फिर पता है, आसमान दिख रहा है, पंछियां दिख रहे हैं, फूलों का बगीचा, बच्चा दिख रहा है, तिलक दिख रहा है, वेरी गुड। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे फोटो में इस पूरे फ्रेम में कितने पंछियां थे, दो, चार, एवरेज लेने पे दो आंसर करती है, वो तो पार्टी था। कितने थे, कितने थे अभी देख के बताइए। मैं आपके मन को खींच के एकाग्रता की तरफ लेकर आ रहा हूं, राइट। और बिलीव मी, ये जो ट्रेनिंग है ना, आपको बहुत बचपना लगता था, क्योंकि हम बच्चों को एक तो सिखा रहे हैं, बट एकाग्रता हर क्षेत्र में जरूरत है। मैंने ड्राइविंग द व्हीकल, एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। भोजन बनाते हुए पहने, एकाग्रता बहुत जरूरत है, देखो वो दो स्पून एक्स्ट्रा नमक कर गया तो गए। हर स्टेट में मेडिटेशन इज एन एक्सरसाइज ऑफ अवेयरनेस, जागृति। मैं यहां से चल रहा हूं तो बी अवेयर, अवेयरनेस, राइट। कभी कभी हमारे साथ होता है, हम कुछ बोल देते हैं और फिर कहते नहीं नहीं मुझे बोलने का मन नहीं था, पता नहीं शब्द निकल गया। अरे मतलब जो शब्द बोल रहे उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, जीवन का काहे का कंट्रोल होगा। मेडिटेशन विल गिव यू दैट मास्टरी, जो मुझे करना है वही मैं करूंगा, जो मुझे बोलना है मैं वही बोलूंगा, और धीरे धीरे आप महसूस करेंगे जो मुझे सोचना है मैं वही सोचूंगा। आप इतने महावीर बन जाते और आपके द्वारा आपके बच्चों को ये दिव्य संस्कार जा रहे हैं। अच्छा, एक बार मैं देखते रहिए, मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा। स्वामी मैं देख करो है ना, पेड़ में कितने जामुन है, गिनती गिनती है, अभी गिनती गिनती छोड़ो, एक दूसरा प्रश्न पूछूंगा, ध्यान से देखना। मैंने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम सारे डिफेंस फोर्सेस को किया है, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएस, कमांडर्स होते हैं ना, एसजी, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, पंजाब पुलिस, केरला पुलिस, कर्नाटक पुलिस, उनको भी एकाग्रता की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखें, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। अच्छा, इस पूरे चित्र में वो जो छोटा सा बालक था उसने कौन से रंग के कपड़े पहने थे, ऑरेंज। वाह, आपके बच्चे कितने सौभाग्यशाली हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ रही है, वेरी गुड, राइट। अब देखो, अब आप पूछेंगे सात वस्तु क्यों लेकर आए, एक बहुत अच्छा, मैं आपको एक श्लोक
सुनाता हूं।
अर्जुन महावीर था, योद्धा था, इसलिए मैंने डिफेंस फोर्सेस का नाम दिया, राइट। और हम लोग हर दिन अपनी परिस्थितियों को सामना कर रहे हैं, हम भी महावीर बन रहे हैं। तो जब हम परिस्थिति से, जब हम युद्ध करते हैं, जब तनाव होता है, स्ट्रेस होता है ना, तो ये श्लोक कहता है कि अपने धर्म को भूलना नहीं, राइट, अपने धर्म को जरूर याद करना। तो आप सभी का कौन सा धर्म है, ये जो धर्म आप बच्चों के सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट में लिखोगे ना, वो शरीर का धर्म है, क्योंकि आप इस परिवार में जन्म लिए, क्योंकि उनका बैकग्राउंड वो था, इसलिए आप इस धर्म के हो।
लेकिन जो ज्ञान के आधार पर पता है हमारा धर्म क्या है, हमारा एक्चुअली धर्म है जो राइटियसनेस कहते हैं, कंसिडरिंग योर राइटियसनेस यू शुड नेवर फॉल्टर. इंडीड फॉर अपहोल्डर्स ऑफ जस्टिस देयर डजंट नो एग्जिस्ट अ मोर अप्रोप्रिएट एंडेवर देन अ बैटल ऑफ राइटियसनेस. सही मार्ग पर चलना ये हमारा अपना धर्म है. और ये सात वस्तु जो मैं बताया ना, ये हमारे आत्मा का स्वधर्म है. हम लोग आजकल चक्र तरफ जो हम देख रहे हैं दैहिक धर्म, अगर किसी ने तिलक लगाया है तो ये बिलोंग्स टू पर्टिकुलर धर्म, अगर किसी ने टर्बन लगाया है तो पर्टिकुलर धर्म, अगर किसी का क्रॉस है तो पर्टिकुलर धर्म, अगर थोड़ा सा बियर्ड है तो पर्टिकुलर धर्म. ये सब दैहिक धर्म है. जो छोटू जब आएगा ना बच्चा, तो पता है कैसे आता है, वो अपने स्वधर्मों को लेकर आता है, सोल कॉन्शियसनेस. तो आत्मा के सात गुण है, वो कौन कौन से गुण है देखेंगे. एक दिन हम जामुन के खेती में गए, बहुत जामुन खाए. जामुन को याद करने से कोई मन शक्तिशाली नहीं बनता, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ गई है. ये तो मुझे बात समझ में आ गया, क्योंकि आपने एक ने एक का दूसरे के साथ एसोसिएट किया तो याद हो गया, चित्र बनाया तो याद हो गया, आपकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी. लेकिन मन कैसे शक्तिशाली बनेगा, कैसे याद होगा. जब मैं जामुन खा रहा था ना तो मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ. आनंद हमारा स्वधर्म है. फिर हमें पतंग उड़ाया, तो पतंग उड़ाने का हमें ज्ञान चाहिए. फिर पतंग उड़ते उड़ते आसमान में टिक गया, आत्मा स्थिर, मेरा मन शांत. शांति हमारा स्वधर्म है. फिर उस आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे, पंछियां उड़ते उड़ते फूलों पंछियां आपस में बहुत प्रेम था. फिर पंछियां उड़ते हुए फूलों के बगीचे में पहुंचे, फूलों को देखकर हमें बहुत सुख का अनुभव हुआ. वहां पर एक छोटा सा बच्चा बैठा था और उनके चेहरे में पवित्रता थी, मस्तक में तिलक था जो शक्ति का प्रतीक है. और इसलिए कहते हैं आत्मा सतोगुणी है. सेवन इनर वैल्यूज, ये सात गुण हमारा स्वधर्म है. सेवन वैल्यूज ऑफ द सेल्फ, राइट. अब ये क्या है, ये हमारा पूरा ही शरीर का सर्किट डायग्राम है. और ये ऐसा कर रहा था, पूरा मॉडल, छोटा मॉडल बन रहा है. एंड दैट हैज टू बी नरिश्ड, इट्स अ सर्किट डायग्राम, राइट. देखिए, एक दिन मैंने जामुन खाया, मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ, ब्लेस कहते हैं. तो हर दिन सुबह कर महसूस करो कि मैं आनंद स्वरूप हूं. स्मृति, जैसी स्मृति वैसी स्थिति. जैसे आप सुबह उठकर महसूस करो मैं आनंद स्वरूप हूं, तो क्या होगा, आपका एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोनल बैलेंस होगा. इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं माइंड बॉडी मेडिसिन में, बहुत सारा रिसर्च जो डॉक्टर शुभदा जी में होता है. मैं रिसर्च की तरफ नहीं जा रहा हूं, लेकिन दैट इज व्हाट, जैसा हम सोचते हैं वैसे उस प्रकार के हार्मोन्स रिलीज होते हैं. जैसे आपने सुबह महसूस किया मैं आनंद स्वरूप हूं, सुबह इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो, ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट रिलीजिंग. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. होता क्या है, आजकल के बच्चों को, आजकल के लोगों को ना, आपके जो बड़े होते हैं ना, वो कहते हैं हमने तो एक ही दर्जन बच्चे पैदा किए, तब तो कोई डिवाइन गर्भ संस्कार प्रोग्राम नहीं था, अभी आपका कौन सा नया चालू हुआ है. अब अपने दादा परदादा को कहना, उनको कहना, स्वामी भाई कहते हैं कि उस समय डिवाइन गर्भ संस्कार का प्रोग्राम इसलिए नहीं था क्योंकि आज से 10, 15, 20 वर्ष पहले हमारे पास मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, फेसबुक नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था. पता है उस समय की जो अवस्था थी ना, बहुत नेचुरल था, नेचुरल. प्रकृति भी बहुत नेचुरल, लोग भी बहुत नेचुरल. इसलिए डिलीवरी वॉज ऑल्सो नेचुरल, राइट. लेकिन आज ये सारा गैजेट्स आने के कारण ये प्रॉब्लम है. इसलिए फिर से हमें इसको समझना बहुत जरूरत है. गैजेट्स के अगेंस्ट में नहीं है, मैं खुद एक इंजीनियर हूं, लेकिन उस दिव्य संस्कृति को समझना बहुत जरूरत है. समझ में ना, राइट. मैंने पतंग उड़ाया, पतंग उड़ाने का हमें ज्ञान चाहिए. हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे बुद्धिशाली बनो. हर दिन सुबह उठो और महसूस करो कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं. जैसे आत्मा सतोगुणी है, ऐसे इंद्रधनुष में सात रंग भी हैं. तो अगर आपको बच्चे को बहुत बुद्धिशाली बनाना है
तो ब्लिस का जो कलर है इट इज वायलेट विद जय, राइट। आपने देखा होगा ना जामुन वो वायलेट कलर का था, फिर आपने देखा पतंग वॉज इंडिगो डार्क नेवी ब्लू। तो अब आप क्या करेंगे, आप महसूस करेंगे कि मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। जब आप पेंटिंग कर रहे हो ना, तो पेंटिंग कर रहे हो तो एक बच्चे का फोटोग्राफ लो और उनका जो ब्रेन में ना, यू हैव टू डू अ पेंटिंग ऑफ डार्क नेवी ब्लू इंडिगो कलर। जब आप इंडिगो कलर का पेंटिंग कर रहे हो ना, तो ये मन को समझ में आ रहा कि ये मेरा बुद्धि बहुत ज्ञानशील बन रहा है और माई चाइल्ड इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी इंटेलिजेंट पेंटिंग कलर्स। इसलिए रंगोली देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि रंगोली में वो सातों गुणों का मिश्रण होता है, सातों रंगों का मिश्रण होता है, राइट। फिर पतंग उड़ाते उड़ाते आसमान में टिक गया, मेरा मन शांत, राइट। और शांति किसके लिए जरूरत है, फॉर माई ईयर नोज एंड थ्रोट। और इसका रंग कौन सा है, वायलेट हो गया, इंडिगो स्काई ब्लू कलर। तो हर दिन सुबह उठना और सुबह उठकर ना आसमान को देखना, राइट। और आसमान को स्काई ब्लू कलर देख के कहना, महसूस करना कि मेरा मन बहुत शांत है और फील करना कि ईएनटी इज गेटिंग चार्ज। फिर आसमान में बहुत सारे पंछियां उड़ रहे थे और पंछियों में आपस में बहुत प्रेम, और ये प्रेम किसके लिए जरूरत है, दिल के लिए, हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसलिए ना हार्ट को आई लव यू लिखते हैं क्योंकि वो दिल को वो स्नेह प्रेम रिस्पेक्ट रिगार्ड की जरूरत है। तो अगर मां को कहना है बच्चे को आई लव यू, तो उसका जवाब क्या है, आप क्या करेंगे, आप एक है ना पेंटिंग लेंगे और हरियाली देखना और उसमें ग्रीन कलर का पेंटिंग करना। और जब आप पेंटिंग कर रहे हो तो आपके मन में संकल्प होना चाहिए कि मैं बहुत प्रेम स्वरूप हूं, आई एम अ लविंग बीइंग, राइट। फिर फूलों 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 को देखकर मुझे बहुत सुख का अनुभव हुआ, और ये सुख किसके लिए जरूरत है, माय डाइजेस्टिव सिस्टम, माय पाचन प्रणाली। इसे कहते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं। इसे सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अभी भोजन करते वक्त कितना टाइम लगता है, भोजन करते वक्त 10 मिनट्स है ना। अब आज से भोजन करते वक्त एक दो बातों का ध्यान रखेंगे, टीवी को बंद रखेंगे, भोजन करेंगे ना तो बहुत खुशी से भोजन करना, और भोजन जब कर रहे हो ना तो उसको अच्छी तरह से चपाना, राइट। फिर कुछ समय के बाद आप देखा वही संस्कार बच्चों में जाएंगे ना, तो बच्चा पूछे मम्मा आप इतनी बार चबाते क्यों हो, तो आप बच्चों से पूछना बच्चे उसका एक दो दान भी आया होगा, तो बोलना बच्चे पूरा दान कितना है, तो कहेगा 32, बनाए 32 दान दिए मतलब 32 बार उसको चबाना चाहिए संस्कार। जब आप बहुत अवेयरनेस के साथ भोजन करो, दिल से ईश्वर को याद करो। एक बार मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा दिन में कितनी बार मुस्कुराते, एक स्टूडेंट खड़े होकर कहता सर 3 टाइम्स सर, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आफ्टरनून लंच इवनिंग डिनर सर। ये बच्चा मुझे कम्युनिकेट कर रहा है कि स्वामी सर आपके पास 3 वक्त का भोजन तो है, फिर भी आपका चेहरा रोबोट जैसा रहता है। और बचपन में आपको स्कूल में सिखाया गया था कि वी नीड टू थैंक गॉड फॉर द ब्रेड एंड बटर गॉड हैज गिवन टू अस, हैव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जिंदगी भर आपको भोजन के लिए तकलीफ नहीं हो, जिंदगी भर आप सुरक्षित फील करेंगे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखना बच्चा उनके चेहरे में इतनी पवित्रता, इतनी रूहानियत, इतनी डिविनिटी, इतना तेज, राइट। और ये पवित्रता किसके लिए जरूरत है, योर ब्लड, योर स्किन। तो हर दिन सुबह उठना और महसूस करना कि आई एम अ वेरी प्योर बी, मैं शुद्ध हूं, मैं स्वच्छ हूं, मैं पवित्र हूं। लास्ट तिलक शक्ति का प्रतीक है, एंड शक्ति इज रिक्वायर्ड फॉर माई मसल्स एंड बोन्स। Right? So let me summarize this. Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So Ananda ke liye, right, it is violet. Jnan ke liye it is indigo. Shanti ke liye sky blue color. Prem ke liye it is green. Sukh ke liye it is yellow. Pavitrata orange. Aur Shakti jo hai, red. Theek hai na? Agar main aapse poochu, acha ye kya hai?
फ्लावर है, वाह
मुझे दिखाई दे रहा है, ये क्या है, रेड है, बाप रे ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्या बात कर रहे हो, ये क्या है,
शक्ति का
प्रतीक। हाँ वाह इंटेलिजेंट मैटर है, हाँ ये शक्ति का प्रतीक। अच्छा बताइए ये क्या है,
फिर गिविंग बोला
वो मुझे दिखाई दे रहा
है ना,
प्रेम है, प्रेम स्वरूप है, तो हर प्रंग के साथ करेंगे। तो मन की दो भाषा में थी कि म्यूजिक, मैंने अच्छे से श्लोक आपको सुनाए, कलर देखा एंड द लास्ट वन इज इमेजेस। अब लास्ट वी आर कमिंग टू द लास्ट स्टेज, इट इज ऑल इमेजेस, राइट। तो सारे जो गुण मैंने बताए बच्चों में लेकर आने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छे से चित्र बनाओ, ठीक है ना। तो चलिए चित्र को देखकर मेरे साथ रिपीट करना, बोले माई बेबी इज एज इंटेलिजेंट एज डॉक्टर कलाम। तो अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो तो म्यूजिक हो गया, कलर हो गया, एक अच्छा चित्र भी देखना, राइट। और मुझे डॉक्टर कलाम बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज अगर आप पूछेंगे स्वामी सर आप ये प्रोजेक्ट क्यों करते हो, राइट, एंड आई ट्रैवल, मैं नेरुल में इतना बिजी होते हुए भी आया ना, मैं आपके पास समय दे रहा हूं ना, फॉर नॉट एनी फीस, आई नॉट बी पेड एनीथिंग, ना हमने आपसे पैसे लिए ना मुझे कोई पैसे देने वाले, लेकिन फिर भी मैंने आपका समय दिया, क्यों? अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। आप सभी पेरेंट्स को लगता होगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, क्यों स्वामी सर ये सब सेशंस ले रहे हैं, क्योंकि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट ऑफ विजन 2020 ऑफ डॉक्टर कलाम। और डॉक्टर कलाम बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, वो कहते हैं ओके, आज के बच्चे जो है ये कल के भविष्य है। और एक बार जब हम डॉक्टर कलाम को मिल रहे थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के लिए तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के लिए तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर वन इज मदर, नंबर टू, नंबर वन इज मदर, नंबर टू, नंबर वन इज मदर, नंबर टू फादर, बोलिए ना, दैट्स द राइट आंसर, नंबर वन इज मदर, नंबर टू इज फादर, एंड नंबर थ्री हमने देखा टीचर्स। डॉक्टर कलाम ने मुस्कुराते हुए कहा प्राइमरी स्कूल टीचर। उस दिन मैंने महसूस किया मैं बड़े बड़े बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मुझे छोटे बच्चों से स्टार्ट करना, जितने छोटे बच्चे उतना हमारा काम इजी हो जाएगा, पूरे देश को और पूरे विश्व को, वी नीड ग्रेट विजनरीज, राइट। अच्छा फिर बोलिए माई बेबी इज एज ब्यूटिफुल एज ऐश्वर्या राय। इसे आपने देखा होगा एक मेल एक फीमेल, एक मेल एक फीमेल, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों बैलेंस होना चाहिए। अगर वो बेटा होगा राइट तो ऐसा होना चाहिए जो माँ को किचन में मदद भी करे, अगर बेटी होगी तो ऐसी होनी चाहिए जो बाहर जाकर सब्जियां भी खरीद लाता है। वी नीड टू बी बैलेंस्ड पर्सन, द लेफ्ट एंड द राइट बोथ शुड बी बैलेंस्ड, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस। बोले माई बेबी दैट स्पोर्टिंग एज सचिन तेंदुलकर, सबको चित्र देखना पड़ेगा। माई बेबी दैट स्वीट एज लता मंगेशकर, माई बेबी दैट क्लेवर एज विश्वनाथ आनंद, माई बेबी दैट लविंग एज मदर टेरेसा, My baby is as patriotic as Subhash Chandra Bose. My baby is as strong as Shivaji Maharaj. My baby is as truthful as Mahatma Gandhiji.
Right?
तो जो गुण आपको दे रहा है उसका इमेज आपको देखना पड़ेगा। बोले माई बेबी दैट करेजियस एज सुनीता विलियम्स, माई बेबी दैट स्पिरिचुअल एज स्वामी विवेकानंद, माई बेबी दैट सक्सेसफुल एज किरण बेदी, माई बेबी दैट प्योर एज मदर मेरी, माई बेबी that knowledge for Shri Ganesh ji, my baby that powerful as Jhansi ki Rani, my baby that educated as Dr. S. Radhakrishnan, my baby that simple as Dr. Annie Besant, my baby that scientific as Homi Jahangir Baba, my baby that complete as Shri Krishna. इसलिए कहते हैं श्री कृष्ण की जितनी ही महिमा करेंगे उतनी कम है,
सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म करेक्ट. दीज आर ऑल द वैल्यूज ज्यादा बहुत बहुत जरूरत है. अब एक काम करते हैं हम लोग करीब तीन चार मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं. करेंगे कभी? वेरी गुड. अभी सीधे बैठे एंड आई जस्ट टेक आफ्टर दिस आगे सीधे आराम से बैठे. अब क्या करेंगे? वी यूज द लैंग्वेज ऑफ द माइंड दैट इज इमेज. हल्के होकर बैठना, रिलैक्स होकर बैठना, आंखें थोड़ी सी खुली रहे और अब हम तीन मिनट रहेंगे. आप में से कितने पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि आपकी बच्चों की एकाग्रता बहुत अच्छी हो? हाथ उठाए. पूरा हाथ उठाए. वेरी गुड. राइट. तो अगले तीन मिनट मैं जो कुछ भी आपको बोलूंगा ना तो उसका करस्पॉन्डिंग आप चित्र बनाते जाए. राइट. अगले तीन मिनट बहुत सिंपल सा चित्र बनाऊंगा बताऊंगा. जैसे मैं पहले आपको बता देता हूं, आप हल्के होके बैठे हो और हम लोग क्या करेंगे पता है? अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय को देखेंगे. पहले बता देता हूं, अब सुनना. पहाड़ी के पीछे से सूर्योदय हो रहा है. कौन सा रंग का होता है अर्ली मॉर्निंग सनराइज? इसके पहले कब आपने सनराइज देखा है? अब अभी अगले छह से नौ महीना देखना. अर्ली मॉर्निंग सनराइज दैट विल एम्पावर यू लाइक एनीथिंग. सूर्य का प्रकाश आपके शरीर के लिए बहुत जरूरत है और अच्छा फील कर. तो अच्छा, तो अभी हम बैठ कर देखेंगे. तो मेडिटेशन इज क्रिएटिंग इमेजेस. तो आप देखना अर्ली मॉर्निंग सनराइज पहाड़ी के पीछे से, फिर पंछियां बहुत प्यार से उड़ रहे हैं, ठीक है ना? फिर आप क्या करना, धीरे से फील करना. यस, नाउ यू आर वेरी रिलैक्स्ड. और आप ये फील करना कि आपका जो शरीर है ना बहुत व्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है. आपका दिल बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है. ओके, यू शुड फील योर हार्ट बीट्स. और फील करना जैसे सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, रक्त का संचार राइट फ्रॉम द ब्रेन टू योर टोज, रक्त संचार हो रहा है. राइट. And it is touching every cell of your body. और आपका सारा सिस्टम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है. राइट. फिर आप क्या करना, ये करने के बाद आप फील करना एट द सेंटर ऑफ फोरहेड आप एक दिव्य प्रकाश, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. आत्मा में सितारे होते ना, ऐसे आप सितारे चमक रहे हो. आप फील करना बहुत शांत, यू आर वेरी पीसफुल एंड वेरी पावरफुल. शांत स्वरूप हो और बहुत शक्तिशाली. देन यू फील कि परमात्मा से सारे शांति के वाइब्रेशन स्काई ब्लू कलर आ रहे हैं, यहां टच हो रहा है और सारा शरीर में फैल रहा है. मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं. ये वीडियो में आपको ये बात समझ में आएगी कि हम लोग ये कैसे कैसे करना. क्योंकि क्या चित्र बनाना मैं आपको बता रहा हूं. दो मिनट के लिए देखेंगे, लेकिन ये वीडियो को आप बार बार देख सकते हो घर जाकर. ये भी हमारे किट में है. लेकिन मैं चाहूंगा कि आप अपने मन को यूज करें आज. और यहां पर जो शरीर दिखा रहे हैं ना, ये जो शरीर जो है ना फिजिकल बॉडी नहीं है, ये हमारा सूक्ष्म शरीर है. आत्मा जब आपके पास आती है ना तो चमकता हुआ सितारे के साथ अपने एक सूक्ष्म शरीर को लेकर आते हैं. हम उसको एंजेलिक बॉडी कहते हैं. तो होता क्या है, जिस व्यक्ति के विचार बहुत अच्छे होते हैं ना तो हमारे चारों तरफ का जो ऑरा होता है ना बहुत वाइट होने लगता है, बहुत प्योर. लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं ना तो वो ब्लैक होने लगता है. इसलिए आप देखेंगे बच्चों को एंजल्स की कहानी सुनाते हैं. फरिश्ते कौन सा कलर दिखाते हैं? व्हाइट कलर. ये सातों रंग जब मिलता है तो बिकम्स व्हाइट. डार्क ब्लैक होता है ना, फिर हम लोग कहते हैं भूत भूत पर जाते हैं, दैट्स नेगेटिव हो रहा. राइट. लेकिन अभी हम देखेंगे जितना अच्छा सोचेंगे ना, यहां पर जो शरीर बता रहे ना इससे हमारा सूक्ष्म शरीर. जस्ट फॉर टू मिनट्स यू विल सी दिस.
चले एक ऐसी मधुर शांति की दुनिया की ओर जिसमें शीतलता है, निर्बलता है, निर्बलता से स्थिरता है, कोई हलचल नहीं, आवाज नहीं, दुख नहीं, सिर्फ सुखद शांति ही शांति है, मधुर शांति. स्वयं को थोड़े समय के लिए एकाग्र करके आ शांति की यात्रा की ओर जाने के लिए तैयार है। लंबी गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे नीली आसमानी रंग की चमकती किरणों को अपने अंदर आने दीजिए और अनुभव कीजिए आपके फेफड़ों में अंतःकरण में शांति के तकापन समाते जा रहे हैं और अशुद्धता निकलती जा रही है।
हफ्ते में एक दिन आप वायलेट लेना, एक दिन इनके को आनंद है, दूसरा दिन ज्ञान है, आज हम शांति कर रहे हैं। ये वीडियो बार बार अगर आप देखेंगे ना तो आपके मन को वो चित्र मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम स्वयं प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जस्ट टेक 3 मिनट्स। Relax yourself completely. चलिए हम एक बहुत सुंदर यात्रा की ओर निकले। जीवन एक बहुत सुंदर यात्रा है। लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। यहां बैठकर सुबह का सूर्योदय आप मन के नेत्रों से देखिए, अर्ली मॉर्निंग सनराइज। पहाड़ी के पीछे से धीरे से सूर्य उदय हो रहा है, ऑरेंज इन कलर। पक्षियों को आसमान में उड़ते देखिए, सुबह का सीन। हर जगह उमंग उत्साह और सूर्योदय हमारे जीवन को इट मेक्स अस ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनाता है। धीरे धीरे आप देखिए बच्चे स्कूल में जाते हुए बहुत खुशी से स्कूल में जा रहे हैं, सीखने के लिए, समझने के लिए, जो बिकम एजुकेटेड। अब धीरे धीरे लेट अस ब्रिंग आवर कॉन्शियसनेस अवेयरनेस फ्रॉम द एक्सटर्नल टू द इंटरनल। महसूस करिए आप अपने दिल के धड़कन को, फील योर हार्ट बीट्स। हमारा दिल 24 घंटे धड़कता रहता है, 24/7। टुडे यू आर एक्नॉलेजिंग द वर्किंग ऑफ योर हार्ट। दिल का बहुत प्यार से धन्यवाद दे रहे हो। आज आपका दिल आप पर बहुत खुश है क्योंकि आपने आपके दिल के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। Your heart as usual very busy, but today you have made it easy. अपने शरीर में होने वाले रक्त संचार को फील करिए, the circulation of your blood right from the brain to your toes. आज तक आपने देखा नहीं है लेकिन आज आप महसूस कर रहे हैं। blood is touching every cell of your body. महसूस करिए कि आपका शरीर का हर सिस्टम सुव्यवस्थित ढंग से कार्य कर रहा है. एवरी सिस्टम ऑफ योर बॉडी इज वर्किंग परफेक्टली. आप स्वस्थ हो. धीरे से स्व के अस्तित्व में टिकने का प्रयास करेंगे. इस शरीर को चलाने वाले आप एक दिव्य शक्ति महसूस करिए. जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं उसी तरह आप भी एक चमकते हुए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, प्रकृति के बीच में चमकते हुए सितारे, दिव्य प्रकाश. शरीर एक गाड़ी है और आप दिव्य प्रकाश इस गाड़ी के ड्राइवर. शरीर एक घर है और आप दिव्य प्रकाश इस घर के मालिक हो. शरीर एक मोबाइल है और आप दिव्य प्रकाश सिम हो. शरीर एक सीप है और आप दिव्य मोती हो. शरीर एक मंदिर है और आप वो दिव्य प्रकाश दिव्य पवित्र चैतन्य मूर्ति हो. महसूस करिए आपके पास एक और सितारा आपके पास आया हुआ है. Another twinkle, twinkle little star. And you are welcoming that wonderful, beautiful star. आपका स्वागत है. That आत्मा is feeling so comfortable in your presence. दिल से उस ईश्वर को याद करिए. परमात्मा जो शांति का सागर है, सुप्रीम डायमंड, आपके जस्ट ऊपर वो शांति का सूर्य है. महसूस करिए शांति के वाइब्रेशन इन स्काई ब्लू कलर धीरे धीरे आपके पास आ रहे हैं. शांति के वाइब्रेशन इन स्काई ब्लू कलर इज फ्लोइंग ऑल अक्रॉस योर बॉडी. And it is touching you and making the baby also very comfortable. आप इस शांत स्वरूप में स्थित. Your baby is also very peaceful. Experience the peace and the silence within you. ईश्वर को दिल से धन्यवाद देते हुए स्लोली रिटर्न बैक. ओ शांति, ओ शांति, ओ शांति. मेडिटेशन इज बेसिकली दिस संबंध आपका परमात्मा के संबंध. और कहते संसार में दो प्रेम जो बहुत शुद्ध स्वच्छ और पवित्र होता है, एक है ईश्वर का स्नेह और दूसरा माँ का स्नेह. तो छोटू को देखिए माँ के गोद में कितना खुशी का अनुभव कर रहा है. एक लास्ट स्टोरी बताया कर मैं वहीं तक करूंगा. और ये लव स्टोरी मैं हर माँ के लिए समर्पित करता हूँ, विशेष अपनी माँ के लिए जिसको मैंने बहुत वर्ष पहले खोया था। लेकिन ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक बार माँ जो थी ना किचन में नाश्ता बना रही थी, छोटा बच्चा माँ के पास आता और कहता मम्मा मुझे इस महीने का बिल आपको सबमिट करना है। मम्मा कहती व्हाट? बोला यस। तो माँ वो बिल पढ़ती, मालूम छोटू क्या लिखता? मम्मा इस महीने आपने 3 बार मुझे नीचे दुकान में सामान खरीदने को कहा, हर ट्रिप के लिए 3 रुपए बिल हो गया 9 रुपए बिल। हम आपके बकेट ऑफ पानी को वहां से यहां उठा के रखने के लिए कहा 5 रुपए। हम आपने छोटी बहन को संभालने के लिए कहा, बहुत कठिन जॉब था मामा, 10 रुपए। सारा महीने का बिल 66 रुपीज। सिंस यू आर माय डियर लविंग मामा 6 रुपीज फेस्टिवल डिस्काउंट, ओवरऑल 60 रुपए बिल। माँ ये बिल पढ़ते हुए उस छोटू को देखते, वेरी क्यूट बॉय, तो माँ भी मुस्कुराती है। बिल के दूसरे पेज में जो खाली पेज था ना, माँ लिखती है 9 महीने मैंने आपको अपने खून से सींचा, नो चार्ज। मैंने आपको चलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया, नो चार्ज। जब भी आप बीमार पड़ते थे रात रात बैठकर मैंने आपकी पालना दी, नो चार्ज। जब भी आप स्कूल से थके आए वापस आते थे गर्मा गर्म भोजन में आपको बनाकर देती है, नो चार्ज। मम्मा नीचे लिखती है 0 रुपीज बिल और बेटे को देती है। बेटा ये बिल को पढ़ता अपनी माँ को देखता और कहता मम्मा आई एम वेरी सॉरी मम्मा। अपना बिल लेता उसको कट करता है और बड़े अक्षरों में लिखता है मम्मा पे इन फुल, पूरा पेमेंट लिखे मम्मा पे इन फुल बट इंडेब्टेड फॉर एवर, जीवन भर मैं आपका कर्जदार रहूंगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं उसे माँ कहते हैं, जहां में जिसका अंत नहीं कीप योर मामा हैप्पी द होल वर्ल्ड विल बी हैप्पी विद यू। ध्यान से सुन रहे, कीप योर मदर हैप्पी, कीप योर मदर हैप्पी एंड प्लीज कीप योर मदर इन लॉ ऑल्सो हैप्पी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। तो एक मदर और मदर इन लॉ जिन्होंने हमें जन्म दिया, दूसरी माँ हमारी अपनी धरती माँ। आप में से कितने पेरेंट्स को आज का सेशन अच्छा लगा वो हाथ उठाए, वेरी गुड। तो गुरुदक्षिणा दोगे, ये हमारा अधिकार है। तो गुरुदक्षिणा क्या देना, आप अपने बच्चों के बर्थडे के दिन उनके जन्मदिन जैसा बर्थडे मनाना मनाइए, लेकिन आप अपने बच्चों के बर्थडे के दिन उनके हाथों से एक पौधा जरूर धरती पर लगाना। आपके बच्चे पूछेंगे मामा ये सुबह सुबह क्यों कर रहे हो, तो आप अपने बच्चों को देखकर कहना ताकि बच्चे आने वाले हम आपके बहुत सारे जन्मदिन मना सके। तो एक माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, दूसरी माँ धरती माँ, और तीसरी माँ वो ईश्वर। गीत गाते ना तुम्हें वो माता पिता तुम्हें हो। एक लास्ट श्लोक बहुत अच्छा लगता मुझे,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मपादेतु मा देशत्वोत्वकर्मणि।
इसका मतलब क्या है, ये बहुत फेमस श्लोक है भगवद गीता का, कर्म करो, डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस, यू आर ट्रस्टी, आप ट्रस्टी हो राइट। परमात्मा की अमानत आपके पास आ रही है उसको आप अपने माता पिता की जो आपका कर्म होता ना वो करो, बट नेवर हैव एनी एक्सपेक्टेशन। अगर संसार के हर माता पिता इस भगवदगीता के श्लोक को समझ लिए, विशेष परमात्मा अगर अभी बता रहे ना आप बताएंगे, आपको कभी भी माता पिता को बच्चों को लेकर चिंता नहीं होगी, बच्चों के प्रति प्रेम और बच्चों के प्रति शक्ति, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट। लास्ट में कबीर कलाम कहते हैं टीच अवर किड्स हाउ टू ड्रीम, वो कहते ड्रीम ड्रीम एंड ड्रीम, वो कहते ड्रीम्स आर नॉट समथिंग दैट वी सी इन स्लीप बट ड्रीम्स आर समथिंग वी शुडंट अलाउ अस टू स्लीप। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते, लेकिन सपने वो जो हमें सोने नहीं दे रहे। चारों तरफ ये जो हलचल चल रही है इसको देखकर माता पिता का भी डरना नहीं है, लेकिन अपने बच्चों हमेशा ये देखा कि हर रात के बाद दिन जरूर आता है। एक बहुत अच्छी दुनिया इस धरती पर आई थी जिसको सतयुग कहते हैं, कृष्णपुरी कहते हैं, विष्णुपुरी कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, जन्नत कहते हैं, बहिष्ठ कहते हैं, अल्लाह का बगीचा कहते हैं, गार्डन ऑफ इडन कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, हेवन कहते हैं, किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं, ऐसी सुंदर दुनिया। तो मेरे बच्चों से पूछे बच्चों आपकी समाज की कैसी परिकल्पना है, तो बच्चों ने बहुत अच्छा एक दस वर्ष की लड़की ने इतना अच्छा चित्र बनाया, देखो दिस इज अ चित्र। आप सभी बोलिए
वी ड्रीम
ऑफ अ वर्ल्ड
दैट
इज फुल ऑफ जॉय, पीस, ब्लिस,
हेल्थ,
वेल्थ
एंड
हैप्पीनेस
एंड
सर्टनली नेचर फुल ऑफ ट्रैंक्विलिटी। अगर ऐसी सुंदर दुनिया बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, चैरिटी भी कैंसर हो। एक गिफ्ट देता हूं विशेष आप सभी के लिए और आप बच्चों को शेयर करना, दैट इज अ फुल फॉर्म ऑफ फैमिली। सभी जो तो फादर
एंड
मदर
आई
लव यू, ठीक है। अब मैं समराइज करूंगा आज का लेक्चर, कुछ समय के बाद आपके बच्चे आएंगे ना, तो मैं आपके बच्चों से एक प्रश्न जरूर पूछूंगा। और मेरा प्रश्न यह होगा Who are you? आप कौन हो, तो क्या जवाब देंगे? अरे वाह, राइट आंसर। सभी बोले
आई
एम
अ
स्पार्कलिंग
एंड
सक्सेसफुल स्टार।
इसका
एक चित्र बनाकर हम लोग वाइंड अप करते हैं और ये गीत हमेशा गुनगुनाते रहना, ये भी हमने किच में दे दिया है, आप हमेशा ये गीत गुनगुनाते रहना, ठीक है। And that geet is a beautiful geet which we call it as Twinkle Twinkle Little Star. परिवार में आपके बच्चों के जीवन में इतनी खुशियां आए कि सिर्फ सफलता दिखाई दे, सिर्फ सफलता दिखाई दे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शांति, जय हिंद, राइट, थैंक यू।